शांति। पहले जरा उन कुछ बातों पे एक नजर डाल लें जो बाबा हमें कहकर गए थे पिछली बार। सबसे पहली बात थी बेफिकर बादशाह बनो। बाबा को तो लगता है मेरे होते ये चिंता क्यों करते हैं, मैं चिंता नहीं करता, मालिक ये पता नहीं क्यों परेशान होते हैं छोटी छोटी बातों में। बेफिकर बादशाह। दूसरी बात थी संतुष्ट मणि। बहुत सुंदर बात है, भगवान को पाकर हमें पूर्ण संतुष्ट हो जाना है। और तीसरी बात थी, याद करें, सदा खुश रहना। और चौथी बात थी निर्विघ्न जीवन, निर्विघ्न सेंटर है? हाँ, वो शिवरात्रि पर था, व्यर्थ की गिफ्ट दे दो बाबा के जन्मदिन पर। तो इन सब बातों का उत्तर बाबा हमसे चाहेगा, चाहेगा या नहीं? कोई माता मेरे से फोन कर रही थी अभी, कहा मेरी लड़की मेरी बात नहीं मानती, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अचानक हंसी की बात याद आई, कहा मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस पे, आज तो उसकी पिटाई कर दी मैंने, और फिर मैं पछता रही हूँ। मैंने कहा बाबा भी यही सोचता है, ये मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती, लेकिन अंतर इतना ही है, आप परेशान हो रही, वो परेशान नहीं होता। हम एक लक्ष्य बना लें, परिवारों में ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहेंगी। सबसे अधिक बुद्धिमान और वो के परिवार से हमारा बहुत प्यार है, उस सब का लक्षण है अपनी स्थिति को न बिगाड़ना और सबको अच्छे वाइब्रेशंस देना। समस्याएं उभरती जा रही हैं संसार में, एक बात के लिए मैं सबको सावधान करता हूं, अपने को भी और सबको, आप सबको करेंगे। समय तेजी से विनाश की ओर जा रहा है, अब सभी ने सुना ही होगा भूकंप के कारण अरब सागर में एक पूरा लैंड ऊपर आ गया है, सुना अर्जुन भाई? तो ये प्रकृति के परिवर्तन प्रारंभ हुए, अरब सागर रहेगा नहीं, पूरा लैंड हो जाएगा। मैंने अभी सुना जहां मैं गया था दुबई में, ओमान में, तो वहां दिखाया कि एक समय था ये सारा लैंड एक ही था, लेकिन वो उसको लाखों साल पहले की बात कहते हैं, समय को तो हम जानते हैं। त्रेता युग तक सारा लैंड एक ही था, त्रेता के बाद जो परिवर्तन हुए थे उसके कारण बीच में सागर आ गया, तो वहां इसकी मान्यता बहुत अच्छी थी। तो एक बात के बारे में हम सब सावधान हों कि सभी के जन्म जन्म के विकर्म और विकार जो अंदर में समाये हुए हैं उनके ऊपर आने का समय आ गया है, वो इमर्ज होने लगे हैं। इसलिए बहुतों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और बहुत पड़ेगा, और बहुतों पर मानसिक प्रभाव बहुत बुरा आएगा, मन पर, जिसकी संसार में कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर उसके बारे में हाथ खड़ा करेंगे, कोई इलाज नहीं। तो हम सभी को अपने को स्वच्छ करना है योग बल से, सभी इसमें अलबेले न हो, ये समय मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। चारों ओर से आंखें और कान बंद करके तीव्र पुरुषार्थ में लग जाएं, समझते हैं ना इसका अर्थ, आंखें और कान, कहां क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, देखने में, नो इफेक्ट की स्थिति में रहकर आगे बढ़ना है। कोई भी केस हो जाता है कहीं भी, आजकल मीडिया वाले भी खूब उसको प्रचार में लाते हैं ना, लेकिन ये सब होना है जिन्होंने त्याग और तपस्या पर ध्यान नहीं दिया, उनके विकार बाहर आएंगे और वो कहीं ना कहीं फेल होंगे। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, निर्विकारी अवस्था बनाने के लिए, विकर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा ध्यान अपने पर देना है, इसमें अलबेले नहीं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी और आत्माएं उसमें इन्वॉल्व होकर खुशी भी खो देंगी, दुखी रहेंगी, बीमार होंगी, मानसिक रूप से अशांत, नींद नहीं आएगी और कोई हल नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने पिछली बार चर्चा की थी, आप सब ने चालू रखा होगा, मनसा सेवा। किन किन का चालू है जरा हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से यही उम्मीद रहती है, सब इस पर बहुत ध्यान दें, केवल क्लास करने और सुनने वाले नहीं, प्रैक्टिकल करने वाले। आप सब सकास दे रहे हैं, इसका इफेक्ट दूसरों पर बहुत अच्छा होता है, हमें पता चले या न चले इसकी जरूरत भी नहीं है। देखो, ठंडी हवा चलती है, अनेकों को सुखद फीलिंग होती है, हवा को पता हो या न हो, हम वाइब्रेशंस देते हैं, कितनों के चित्त में जलती अग्नि शीतल हो जाती है, कितनों को अच्छी नींद आती है, कितनों के टेंशन समाप्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा सभी चालू रखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष रूप से, और प्रकृति को भी रोज योगदान करेंगे। पहले कई कई साल के बाद भूकंप की बात सुनते थे, अब थोड़ा जल्दी सुनेंगे, और एक समय आएगा कि शायद रोज ही सुना करें। ठीक है हरगोविंद, रोज ही सुना करेंगे, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि लोग लड़ झगड़ के भी मरेंगे और मारेंगे, ये खुरे नाहक खेल भी चलता रहेगा। युग बदलना है, छोटी चीज नहीं है, रात दिन में बदलती है तो सुखद सवेरा होता है, लेकिन ये रात जब दिन में बदलेगी तो भयानक स्वरूप हम सबको दिखना है। तो अपने को बहुत मजबूत बनाएंगे सब, खुशी चली न जाए अटेंशन देंगे, खुशी जाए नहीं, बहुत ध्यान देना है सबको, बातें आती रहेंगी, न स्थिति जाए न खुशी जाए, सब अपने को इसके लिए तैयार करें। परिवारों में भी कोई बात आए, कोई बात सुनने को मिले, अपने लिए हो, खुशी पर हमारा अपना अधिकार। और ये स्लोगन बाबा का हम पक्का रखेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ। तो बोलो, सभी माताएं बोलो, पक्का हो जाए, आपके अंदर चला जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त, बहुत जल्दी समाप्त होंगी। किसी को समय लग सकता है दो चार दिन, क्योंकि स्थिति अगर बहुत मजबूत नहीं है, और अगर हमारी लंबे काल की अच्छी स्थिति है तो स्थिति श्रेष्ठ, परिस्थिति बहुत जल्दी लोप होती हुई नजर आएंगी। आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेते हैं बाबा की उन्हीं मुरलियों से, जो हमारी खुशी को बढ़ाए रखे, जो हमारे पुरुषार्थ को एक सुंदर दिशा देती रहे, अपने भाग्य और भगवान को, भाग्य विधाता को याद रखना है। चलते चलते हम अपने को साधारण मान लेते हैं और अपने महान भाग्य को भूल जाते हैं, भाग्य विधाता भी भूल जाता है। हम अपने भाग्य की 10 पॉइंट्स निकालेंगे अब, और सब उनको फील करते हुए एक सुंदर नशे के अनुभव में चलेंगे। पहला सर्वश्रेष्ठ भाग्य, महेश भाई, भगवान हमें मिला है, कुछ सोचने की बात नहीं, इसमें प्राप्ति हो चुकी है हमें। जो हमारी जन्म जन्म की कामना थी, भगवान को देखने की इच्छा थी, वो तो छोटी सी इच्छा थी, वो हमें मिल गया, हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया। और अच्छी अच्छी बातें सोचें, हमारा जीवन साथी बन गया। हम तो केवल उससे मिलना चाहते थे, पर वो जब आकर हमें मिला तो उसने कहा मैं तुम्हारा हूँ। ये सब बड़ा भाग्य हमें पहले ही क्षण प्राप्त हो गया। इसके लिए हमें कुछ न करना पड़ा, न करने की अब जरूरत है। क्या जरूरत है? स्मृति की। अगर हम अपने इस पहले भाग्य को स्मृति में रखें तो जीवन खुशी में खिला रहेगा, रहेगा या नहीं? स्वयं हमारा हो गया भाग्य विधाता, हमारा जीवन साथी हो गया। उसको अपने सामने खड़ा देखा करें, बहुत अच्छा विजन बनाया करें, रोज कम से कम एक बार। ये काम सभी को रोज सवेरे या शाम को 6 बजे 5 बजे कभी भी जरूर करना है कि बाबा हमारे सामने खड़े हैं। जैसे उधर दिखाया ना कि अर्जुन रथ में बैठा है, श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं, हम बैठे हैं और बाबा हमारे सामने खड़ा है, और कम से कम 5 बातें रोज याद दिलाता है। क्या सुंदर बातें अपने पास रख लें, चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो वही जो सब जगह लिखी है, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, बिल्कुल सामने सामने देखेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो, तुम तो फरिश्ते बनकर इस संसार में विचरण करो, तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो, तुम तो पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। ऐसे जैसे बाबा सामने खड़ा होकर हमें कह रहा है, तो रोज एक नई जागृति आएगी। माताओं को बच्चों की चिंता है तो बाबा सामने खड़ा होकर कह रहा है ये तुम्हारे बच्चे थोड़ा ही हैं, तुमने कितनी बार कहा है ये बाबा तुम्हारे हैं, फिर चिंता मैं करूंगा ना इनकी, तुम क्यों करते हो। माताओं को कह रहा है बाबा खड़े होकर, तुम चिंता ना करो अपने बच्चों की, ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तुमने तो दे दिए ना, दिए या नहीं माताओं ने? जरा हाथ उठाएंगे जिन जिन्होंने दे दिए, सोच समझ के उठाना। तो बाबा सामने खड़ा होकर ये कहेगा। मैं सुनाई है वो बात एक गांव की माता की, जिसके 2 यंग बच्चे 6 मास के अंदर ही शरीर छोड़ गए, ज्ञान में थे, बिलासपुर की ये माता है। 2 कन्याएं सेंटर में, 2 लड़के अपना काम में थे, 26-28 साल की उम्र कुछ ऐसी, दोनों ने शरीर छोड़ा बहुत जल्दी जल्दी के अंतर से। मैं वहां गया, मैंने कहा भाई वो माता, उनकी लड़कियों ने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे मिलाओ तो सही, उनकी स्थिति भाई खराब हुई होगी डेफिनेटली, 2 बच्चे 2 मास के अंतर से चले जाएं, 2 ही बच्चे, दोनों लड़की सेंटर में, वो अकेली माता रह गई। तो गांव से आई अगले दिन भट्टी में, मैंने उससे पूछा तुम्हारी स्थिति कैसी रही। तो देखो ऐसी माताओं पर भगवान भी प्रसन्न रहता है और हम आप सबको भी गर्व होगा। उसने कहा मेरी स्थिति बहुत अच्छी रही। मैंने कहा कैसे, क्या याद रखा तुमने? कहा मैं पहले से ही बाबा को रोज ही कहती थी ये चारों आपके हैं, 2 कन्याएं सेंटर में 2, अब वो ऊपर गए, मैंने कहा बाबा को आपके थे, आपके पास आ गए। कहा इस संकल्प ने मुझे बहुत अच्छी स्थिति में रखा है, बाबा के ही थे ना, तो यहाँ थे तो भी बाबा के, अब ऊपर गए जहाँ बाबा भेजे उनसे कुछ सेवा ले, उनका मेरे साथ का पाठ पूरा हो गया। देखो चिंतन है ना, और गांव की माता बिना पढ़ी लिखी माता सीमा बहन, मैं देखता रह गया उसे कि देखो सत्य ज्ञान इसको ही कहते हैं ना। हमारे पास बहुत बड़ा ज्ञान हो लेकिन समय पर विस्मृति हो जाए तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो इस तरह रोज सवेरे एक बार अभ्यास करेंगे, पसंद है भाई भी और सब बहने माताएं कन्याएं भी, सामने खड़ा होकर कह रहा। किसी कन्या को इनसिक्योर फीलिंग हो, डर लगता है ना क्या होगा हमारा, अकेले कैसे ये यात्रा पूरी करेंगे, तो सामने खड़ा होकर बाबा कह रहा है क्या तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। एक कन्या की हंसी की बात सुनो, जब वो ज्ञान में थी मेरे से प्रश्न करती थी अकेला ये जीवन कैसे जीऊंगी, माँ बाप ने भी देखा इसके बस का नहीं है तो शादी करा दी, पति ऐसा मिला अब कहती है इस पति के साथ कैसे जीऊंगी जीवन भर, अकेली अच्छी थी मैं तो। इतना कष्ट होने लगा उसे, तो मैंने कहा तो तुम्हारा भाग्य है, जब अकेली थी तो दूसरे को ढूंढती थी, जब साथी मिल गया तो अकेला होना चाहती हो, इतना प्यार अगर भगवान से करती तो बेड़ा पार हो जाता ना। तो बाबा सामने खड़ा है और हमें इस तरह कहता है, मेरे से भी कन्याएं खुल के बात कर लेती हैं, जरा अपने मन की बात सुनाती हैं, मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु कलयुग का माहौल बहुत बुरा है, किसी की कोई गलती नहीं है, अपने को संभाल के रखना है। एक भाग्य की चर्चा हमने की, भगवान हमारा हमें मिला है, अगर हम केवल ये याद रखें इस जीवन में और कुछ मिले या न मिले, वो मिला जिसको मिलने की जन्म जन्म से प्यास थी, तो आत्मा तृप्त रहेगी। दूसरा भाग्य किसी से जुड़ा हुआ है, नया जन्म दिया बाबा ने, जीवन ही बदल दिया। संसार की राहें कैसी, हमारी राहें कैसी। तीसरा भाग्य पढ़ाई से जोड़ो, स्वयं भगवान रोज सवेरे आकर पढ़ाता है। चौथा भाग्य, मुझे याद आ गई बाबा की मुरली की बात, जो मैं क्लासेज में सुनाता हूँ, आप सबको बहुत नशा चढ़ेगा। ओम शांति भवन में बाबा की मुरली चल रही थी, तुम कितने भाग्यशाली हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। क्या पालना, बाबा ने सुनाना शुरू किया, सवेरे बाप तुम्हें जगाता है, रात को सुलाने आता है। आता है या नहीं, इसे भी कहा था ना तुम गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो या ना करो, मैं तो करता हूँ देखो। फिर कहा रोज सवेरे तुम्हें पढ़ाने आता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, और कोई बच्चा अगर दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पहुंचता है। आगे की बात बहुत सुंदर है, बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, और कहा सबसे नशे की बात, तुम उन्हें कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। चिंतन करेंगे सभी, भगवान खाली है हमारे लिए, निरंतर मदद करने के लिए, शक्तियां देने के लिए, वरदान देने के लिए, हमारी चिंताएं मिटाने के लिए, हमारे बोझ हटने के लिए, इसका हम फायदा कैसे उठाएं। लिख के रख देना अपने पास कहीं ये बात, रोज एक नजर में आ जाए, भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, भगवान हम पर मेहरबान हुआ है, भगवान हम पर राजी हुआ है, हम अपने सद्विवेक का प्रयोग कैसे करें, क्या करें अब जब भगवान राजी हुआ है। चिंतन करना है सभी को, ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य। और भाग्य सुनाएं, बोलो कौन बोलेंगे हाथ उठा के, अलौकिक परिवार मिला। और भी एक अच्छी बात इसमें जोड़ दें, भगवान जब नया संसार बनाने आया तो हम भी उनके साथ हैं। बोलो प्रताप भाई, सत्य ज्ञान मिला, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। जन्म जन्म की सत्य की खोज पूरी हो गई। संसार में किसी के पास भी सत्य ज्ञान नहीं है। मैं अखबार में आज एक लेख पढ़ रहा था, वो बड़े लेख आते हैं ना, मैं उन पर थोड़ी नजर डालता हूँ। तो कोई लेखक कह रहा था कि ये नेता स्वर्ण युग की चर्चा करते हैं, स्वर्ण काल की चर्चा करते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, ये सब कवियों की कल्पना, ऐसा कभी था ही नहीं, संसार ऐसा ही है जैसा था। मैं सोच रहा था इस पत्रकार को, जो वरिष्ठ पत्रकार है, इतिहास का ज्ञान ही नहीं कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जब यहाँ अथाह संपदा थी, उससे पहले मौर्य काल, ये सब स्वर्ण काल थे। अथाह संपदा, घरों को ताले नहीं लगते थे, चोरी नहीं होती थी, कोई रोता ही नहीं था, किसी को भोजन का अभाव ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के पास ज्ञान नहीं, और बाबा ने हम सबको, सबको, छोटे बड़े सबको संपूर्ण ज्ञान दे दिया, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। विंदेश्वरी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भाग्य मैंने प्रश्न किया है। हाँ, समर्पित लोगों का भाग्य भगवान की गोद में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया में बैठे हैं। समर्पणता का सबसे बड़ा भाग्य मिला चिंता मुक्त, न कमाने की चिंता, न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम। गा देना जरा, करते हैं या नहीं, समर्पित बैठे हैं ना बहुत सारे, सब चिंताएं हर ली। नहीं तो लोगों को हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई, सब्जियां 50 रुपए किलो मिल रही है, आपको तो पता ही नहीं होगा कितने किलो, मुझे भी नहीं पता होता क्योंकि आती है, हमें तो कुछ लेना देना नहीं, कितने की आई है, ट्रक भर के आ गए, ओम शांति। तो समर्पित होने का सबसे बड़ा भाग्य पहले ही क्षण से मिल गया। सीमा बहन, आपको मिला या नहीं? मिल गया। प्याज महंगा हो रहा है और ब्राह्मण खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितना बड़ा भाग्य मिला। और बोलो, सब अपने अपने भाग्य को देखकर जरा आज मुस्कुराओ, प्रसन्न हो जाओ, वाह मेरा भाग्य मिला है या नहीं। कन्याओं का क्या विचार है, या सोच ही रहे इधर जाएं या इधर जाएं, किधर जाएं, उधर जाएं, जिधर, बोलो, बाबा ले जाए। मन से अपने को समर्पित कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और भाग्य बोलो, नहीं? दिव्य बुद्धि मिली, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। एक निर्णय करने का यथार्थ मार्ग मिल गया, ये सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, ये राइट है या ये राइट है, राइट का ज्ञान मिल गया है। और बोलो, माताओं से बुलवाना चाहते हैं, सच्चा सच्चा साथी मिला, बहुत अच्छी बात। और माताएं हाथ उठा के बोलो, माताओं के पास बहुत भाग्य है। हाँ, ये भी है, बाबा ने खुद कहा, मुझे बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं। कभी तुम खाने पे बुला लेते हो, बाबा आ जाओ, कभी कह देते हो हमें उठाने आ जाओ, कभी कह देते हो ये समस्या आ गई, बाबा आ जाओ मदद करो, मैं तो सारा दिन भागता ही रहता हूँ। भगवान को ही तंग कर दिया बच्चों ने, कर दिया नहीं, वो बहुत आनंदित है कि मेरे बच्चे मुझे यूज करते हैं, हैं? माताओं के पैर दबाए, उनकी थकान मिटा दी, भाइयों के भी दबाए हैं जो भाई थक गए थे बहुत, देखो बूढ़ों को जवान बना दिया बाबा ने, जिनको कुछ नहीं आता था उनमें योग्यताएं भर दी। मैं सोचा करता हूँ, आप लोग कम जानते होंगे, हमारे बहुत सारे हजारों गीत पहले से, अभी तो सतीश भाई औरों को भी आप जानते हैं, आप उस व्यक्ति को जानते नहीं जिसने ये गीत लिखे बहुत सारे, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बाबा ने योग्यताएं भर दी। अच्छे अच्छे गीत उसके द्वारा बनवाए जिनसे आत्माओं का योग लग जाता है, मगन हो जाते हैं हम सब। हमारे साथी हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी योग्यताएं देकर भी सुंदर भाग्य दिया। पीछे वाले अपने भाग्य की चर्चा करेंगे, खड़े होके जरा ऊंची आवाज में। संतोष भाई आप तो चमक रहे हैं। सबको बहुत बड़ा खुशी का खजाना दे दिया है, सब खजानों से हमारी झोली भर दी बाबा ने। दुनिया में सुख शांति और खुशी के लाले पड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे लोग खुश नजर नहीं आते। मुझे मिला एक बहुत साहूकार व्यक्ति जिसका सब कुछ चला गया बेचारे का। कहां वो व्यक्ति सरकार को मदद करता था और कहां अब खाली हो गया है। तो खुशी नहीं, नींद नहीं रहती है। तो हम सभी का रक्षक छत्र छाया स्वयं भगवान बन गया बाबा का। करते हैं जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो उनको भाग्य की कहां कमी रहेगी। जिनका बाप ही बिगड़ी को बनाने वाला हो उनकी बिगड़ेगी कैसे। जिनका बाप विश्व रक्षक हो उन्हें डरने की बात कहां। लेकिन ये स्मृति में रहे, बस बात केवल स्मृति की है। और कोई सोचेगा, कोई ये भी सोच सकता है, एक रहस्य आपके ख्याल में रहे कि हम तो बहुत गरीब हैं, ये सब नशे रखने से फायदा क्या होगा, रोटी थोड़ा ही मिलेगी इन सब नशों से। क्या उत्तर देंगे आप इस रहस्य को, इस सीक्रेट को सभी ख्याल में रखेंगे। जिसको अपने भाग्य का जितना ज्यादा नशा रहेगा उसके भाग्य का सूर्य चमकने लगेगा। किसी का भाग्य बहुत कम हो, मान लो गरीबी है, घर में अनेक तरह के अभाव हैं, जिसको लगता है भाई ये व्यक्ति भाग्यवान नहीं है, अगर भाग्य का नशा हो जाए तो भाग्य चमकने लगेगा। एक लड़का मुझे अभी फोन कर रहा था रास्ते में, कहा मैं तो भाई मजदूरी करता हूँ, बाबा का बना हूँ, लेकिन मेरे जीवन में निराशा बहुत होती है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, मेरे पास बहुत गरीबी रहती है, मैं ज्ञान में आ गया हूँ, बाबा का सहारा तो मिल गया पर ये सब तो साथ चलता है। सबका उत्तर आप सब सबको भी सिखाएंगे। भाग्य का नशा हमारे भाग्य को चमकाता चलेगा। इसलिए बहुत सारी पॉइंट जो अच्छा चिंतन करते हैं शांत में बैठ कर अपने पास लिख लें। बहुत पॉइंट लिखी जा सकती हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। देखो कितना बड़ा भाग्य है कि हमारा भाग्य बहुत उज्ज्वल है, ये भी तो भाग्य है ना। हमें कल की चिंता नहीं, हम ये देह छोड़कर सीधे कहां जाएंगे, स्वर्ग में, ऊपर तो जाएंगे ही, सुंदर भाग्य मिलेगा हमें, कोई चिंता नहीं। पढ़ाई ऐसी पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, भविष्य का भी बहुत सुंदर, कोई चिंता नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा न मृत्यु का डर। तो अपने भाग्य पर दृष्टि डाला करेंगे। और भी बहुत बातें कही जा सकती हैं, एक एक बात के छोटे छोटे हिस्से भी किए जा सकते हैं। भगवान ने हमारी जिम्मेदारी ले ली है, क्या जिम्मेदारी ली है, विनाश होगा जो कुछ भी होगा, बाबा तुम्हें दाल रोटी खिलाता ही रहेगा या नहीं, ये बाबा की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब संसार में इन सब चीजों का भी अभाव हो जाएगा, एक काल आएगा, आ गया है, जब हम महंगाई से गुजरेंगे, लेकिन इसके बाद काल आएगा जब वस्तुएं नहीं होंगी। बाबा ने कह दिया था, थैला भर के पैसों का लेके जाओगे, थैला सब्जियों का लाओगे, बस समय सामान ही नहीं होगा, सब्जियां ही नहीं होंगी, दवाई नहीं होगी, दूध नहीं होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को जीवन यापन चलता रहेगा। हमें तब ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये खाएं ये खाएं, जो मिले तृप्ति, इसलिए बाबा अभी से संतुष्ट आत्मा बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है कि बस इतना ही रहे कि पेट तृप्त हो गया, भूखे नहीं है, ये मिले वो मिले, हम तो ऐसा खाते थे वैसा खाते थे, अब ये थोड़ा थोड़ा मिल रहा, ये नहीं, पेट तृप्त, पानी की प्यास तृप्त, रहने के लिए पर्याप्त स्थान, जीवन जीने के लिए सब कुछ ठीक, कार खड़ी होंगी तेल होगा ही नहीं, ये स्थिति आएगी ना तो कार क्या करेंगी, बेकार। तो ऐसी स्थितियों को पार करने के लिए अभी से अपने को संतुष्ट आत्मा बना दें। सबको चिंतन करना है, मुझे कौन सी बात असंतुष्ट करती है, किसी का व्यवहार, कोई चांस नहीं मिलता तब, दूसरों को चांस मिलता है मुझे नहीं मिलता तब, ईर्ष्या के कारण या अपनी स्थिति के कारण असंतुष्टता है, सबको सोचना है अच्छी तरह। कुछ आत्माएं ऐसी मिलती हैं, सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं रहते। कुछ ऐसे मिलते हैं, सवेरे उठते नहीं तो संतुष्ट नहीं कि भी उठते नहीं, लेकिन उठते भी किसी बात से असंतुष्ट हो जाना माना अपनी शक्तियों को नष्ट कर देना। असंतोष हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करता रहता है, इसलिए जिस बात की हम बहुत चर्चा करते आते हैं अपने इस ग्रुप में, साक्षी भाव, मेरे साथ भी जो हो रहा है वो भी सत्य, उलझन नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में, ब्राह्मण परिवार में भी, अपने जीवन में समस्या इसलिए महसूस करते हैं, समस्या है नहीं, उन्हें लगता है हमारे परिवार में बहुत समस्या है, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं। सब सिखाएंगे आप दूसरों को भी, सोचना कम, समस्याएं खत्म। जो ज्यादा सोच रहे हैं उन्हें हर बात एक बड़ी समस्या प्रतीत हो रही है, सोचना नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करना ही है, वो होगा। आपके घर में अगर चार बच्चे हैं, अगर चारों योग्य हैं, चरित्रवान हैं, आज्ञाकारी हैं, तो आप बहुत बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ये न सोचें ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, सब आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं, सबके साथ उनके पाप और पुण्यों की कहानी है, उससे कोई बचेगा नहीं। इसलिए थोड़ा साक्षी भाव और उन्हें शुभ भावनाओं की मदद, जिसके जीवन में बहुत समस्याएं हों वो उन्हें योग बल से ठीक करें, एक घंटा रोज स्पेशल पावरफुल योग। याद रखेंगे, ये बात बहुत भूल जाते हैं कि अमृत वेले का योग हमारे अपने कल्याण के लिए होता है, दूसरों के लिए हमें योग करना है तो अलग से करना पड़ेगा। तो ऐसे योग बल से अपनी समस्याओं को हल करेंगे। मैं ये देख चुका हूँ बहुत अनुभवों से कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो ईश्वरीय शक्ति से समाप्त न हो जाए, सबका समाधान है अध्यात्म, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाएं, सकाश देना, योग करना, अपने चित्त को शांत रखना, इस पर सभी को बहुत ध्यान देना है। तो उन सब बातों पे ध्यान देना है जो बचपन से आप सुनते आए हैं बाबा की मुरली में, दूसरों को देखकर अपने मन को विचलित न करो, पर चिंतन में अपनी शक्तियों को नष्ट न करो, ईर्ष्या द्वेष से अग्नि है अपनी आंतरिक प्योरिटी को जलाओ नहीं। बहुत लोग इसलिए परेशान हैं कि दूसरों को देखते हैं, कुछ नहीं है तो दादी जानकी क्या कहा करती हमेशा, अवगुण दूसरों के, मुसीबत हमारी। बहुत अच्छा स्लोगन है उनका। गलती वो कर रहे हैं, परेशान हम हो रहे हैं। कई लोग ऐसे गलती करके भी खुश हैं और हम परेशान उन्हें देख देख के, ये भी नहीं। तो परचिंतन, परदर्शन, परमत, इन तीनों से बचकर अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएंगे। बाबा आएंगे तो हम सबको खुशनुमा देखे। अब जहां भी बैठे होंगे, बाबा की नजर तो वहीं पहुंच जाती है। उसको पता है मेरी कौन महान आत्माएं कहां हैं। और सब ये भी याद रखेंगे, अपने लिए याद रखेंगे, दिन में सवेरे से लेकर रात तक कई बार बाबा हमें देखता है, बहुत मजा आएगा। कई बार उसकी नजर मुझ पर आती है, हर एक अपने को ये बात दे दे, देखता है या नहीं, मजा आ जाएगा खूब। और कई बार वो हमें अपने पास बुलाकर हमसे रूढ़िहान करता है। ये सत्य बातें हैं, ये कल्पना नहीं है। कोई सोचे हम मन को खुश करने के लिए कह रहे हैं, यही हो रहा है। बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है ये हमें पता नहीं चलता। जैसे आपके घरों में माँ बाप बैठे हैं, बहुत आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, और फाइनल में बच्चे आपको ये कह देंगे तुमने हमारे लिए क्या किया, आपने सारा जीवन लगा दिया, खुद भूखे रहकर उनकी पालना की होगी, और वो एक सेकंड में पानी फेर देंगे तुमने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम भी कर देते हैं बाबा के लिए। वो हमें बहुत मदद कर रहा है, हमें पता ही नहीं, सोचते हैं बाबा तो मदद नहीं करता, हमें अकेले छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, बाबा के प्यार को और उसकी मदद को हम बहुत अच्छी तरह से महसूस करें तो रोज कई बार वो हमें देखता है। बाबा ने कहा है मैं अपने बच्चों को, उसमें भी विशेष जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, उनको वो कई बार देखता है कि कहाँ हैं, किस स्थिति में है अब, और अगर कुछ गड़बड़ है तो प्रेरणा देगा, टच करेगा, स्थिर हो जाओ। और ये बात हमें आगे चलकर बहुत काम आएगी। तो हम बाबा को अपना स्वरूप दिखाएंगे, बेफिक्र बादशाह। बाबा खड़े होकर रोज कह देता है तुम तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम तो मस्त रहो, मैं देखूंगा जो कुछ भी होगा, तो बहुत अच्छा अनुभव होता रहेगा। तो बाबा के आने तक हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब से ही हम कुछ अभ्यास शुरू कर देंगे। पहला स्वमान, मैं बेफिक्र बादशाह हूं, और उसी रूप में देखेंगे। बाबा सामने खड़ा है, हमें याद दिलाता है। दूसरा स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूं, और तीसरा स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। और योग अभ्यास को पीछे जैसे सभी ने ऐसे दीदीपन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, मुझे बाहर से भी समाचार मिले कि हमने भी बहुत अच्छी की है। तो हमारे बार बार के अभ्यास हमारी स्थिति को सुंदर बना देते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल।
ओम शांति
शांति,
ओम शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
मिले कि हमने भी बहुत अच्छी की है, तो हमारे बार बार के अभ्यास हमारी स्थिति को सुंदर बना देते हैं, तो फिर से वही काम करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर सकास देना। मैं कुछ विधि फिर से आपको याद दिला देता हूँ। गीत बजता है, आप फिक्स कर लें, चाहे तो हम यहीं फिक्स कर देते हैं, 10:30 बजे का गीत बजता है और आप तुरंत अभ्यास करेंगे। मेरे सामने ग्लोब है, विश्व का गोला, मैं बाबा की किरणों के नीचे, मास्टर सर्वशक्तिवान, और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। 3 मिनट के गीत में आनंद आएगा। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, अच्छी फीलिंग 10-20 सेकंड, परम धाम से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर मस्तक से ग्लोब में समा रही हैं। तो सभी एक साथ अभ्यास करेंगे तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा गीत बजेगा 12 बजे, अभ्यास करेंगे। 12 बजे का टाइम थोड़ा दिन हो गया। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, और सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। साढ़े 5 बजे के गीत में, अब ये शाम का समय हो गया, आप में से कई सेवाओं में भी होंगे, लेकिन लक्ष्य बनाना है कि हमें करना है। लक्ष्य रख लें 5:30 बजे मुझे प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में, बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति को दान। 7:30 के ट्रैफिक कंट्रोल पर एक ही विजन बनाएंगे सब, मैं पूर्वज उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में ऊपर विराजमान। शांति के सागर की शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझ में समाकर नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। सभी धर्मों की आत्माओं को शांति का दान। फिर 9:30 का बजेगा, बस 5 की लेंगे हम, 9:30। हम संकल्प करेंगे संसार में रोज जो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं आतंकवादी मार रहे हैं लोगों को, कहीं प्राकृतिक प्रकोप में, कहीं एक्सीडेंट्स में, कहीं हॉस्पिटल्स में जो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, मैं मास्टर दुख हरता हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझे नीचे संसार में जा रही हैं, इन सभी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। ये अभ्यास करेंगे। हमारी सकाश बहुत काम करती है आप जानते हैं, तो हजारों लोग दुखों में, टेंशन में, अशांति में आ जाते हैं, हमारे शांति के वाइब्रेशंस उन्हें रिलैक्स करते हैं। तो सभी बहुत अच्छा ये अभ्यास करेंगे, वो तीनों स्वमान और योग अभ्यास सारा दिन। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हूँ। याद रखेंगे जैसे सूर्य के द्वारा संसार से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर संसार में फैलाना, इससे माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान वाच है, इस पर बहुत ध्यान देंगे। इतना अभ्यास करेंगे तो स्थिति बहुत सुंदर रहेगी।